بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر، ستی وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتا سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں۔ تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, आज़र की 19, रबीउस्सानी की 23 और दिसंबर की 9 तारीख। प्रोग्राम में पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पेश होगी, जिसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम शौर्य गाथा और सभा का अंतिम प्रोग्राम है आज कल। हज़रत अली सलाम फरमाते हैं कि हे आदम की संतान, आने वाले कल की चिंता न कर, क्योंकि अगर तेरी ज़िंदगी का एक दिन भी बाकी होगा तो तेरा पालनहार तेरी रोज़ी तुझ तक पहुँचाएगा। आप फरमाते हैं कि अपने ज़बान की इस तरह रक्षा करो, अपनी ज़बान की इस तरह रक्षा करो जिस तरह तुम सोने चांदी की रक्षा करते हो, क्योंकि कभी कभी मुँह से निकली हुई बात किसी बड़ी नेमत के छिन जाने का कारण बनती है। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wes.irib.ir। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506592। हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। और अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि अमेरिका टीका और दवाएं आयात करने के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ईरान से परमाणु समझौते के बारे में अमरीकी सुर में बात कर रहे हैं। यूरोपीय देश मेडिटेरेनियन सी से गैस निकालने के मुद्दे पर तुर्की पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और भारत के आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में फैली रहस्यमय बीमारी के मरीजों के खून के सैंपल में सीसा और निकल जैसी धातु निकली है। बाप मोहम्मद अली कुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि अमेरिका टीका और दवाएं आयात करने में रुकावट डाल रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस पैंडेमिक से निपटने के लिए जरूरी टीके और मेडिकल मशीनों व औजारों को खरीदने की ईरान की कोशिश में रुकावट डालने पर अपने अमरीकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप की यह कहते हुए आलोचना की कि व्हाइट हाउस का शैतानी टोला बुजुर्ग और विकलांगों को भी निर्दयी पाबंदियों से छूट नहीं दे रहा है। डॉक्टर हसन रूहानी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि ईरान की टीका और मेडिकल मशीनों को आयात करने की हर कोशिश में अमरीकी सरकार रुकावट डाल रही है। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि ईरान का कोविड-19 का टीका खरीदने का पक्का इरादा है और पैसे भी हैं, लेकिन अमरीका रुकावट डाल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस ओर से मायूस हों, हम हर हाल में इस मुश्किल से निपट लेंगे। दूसरी ओर ईरान के दौरे पर आए आजरबैजान गणराज्य के विदेश मंत्री जयहून बायरामोफ ने राष्ट्रपति रूहानी से भेंटवार्ता की। इस मौके पर राष्ट्रपति रूहानी ने करेबाग विवाद में इस्लामी गणतंत्र के साफ दृष्टिकोण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान आजरबैजान गणराज्य की संप्रभुता का समर्थन करता है। इसके साथ ही उन्होंने आर्मीनिया के साथ जंग के खत्म होने, आजरबैजान के अतिग्रहित इलाके के आज़ाद होने और संघर्ष विराम के लागू होने पर खुशी जताई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी व्हाइट हाउस की एकपक्षीय नीतियों का समर्थन करते हुए अमेरिका द्वारा गैर कानूनी तरीके से परमाणु समझौते से निकल जाने का उल्लेख न करते हुए ईरान से कहा है कि वो परमाणु समझौते से संबंधित अपनी सभी प्रतिबद्धताओं पर वापस लौट आए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में अमरीका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से एकपक्षीय तौर पर परमाणु समझौते से निकलने और ईरान पर फिर से प्रतिबंध न लगाने पर खेद व्यक्त किया। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने पर खेद व्यक्त किया। साथ ही गुटेरस ने परमाणु समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन पर लौटने के लिए ईरान का आह्वान किया। एंटोनी गुटेरस ने अपनी रिपोर्ट में अमरीकी अधिकारियों द्वारा ईरान के खिलाफ किए जाने वाले झूठे दावों को दोहराते हुए ईरान से कहा है कि वो परमाणु कार्यक्रमों और मिसाइलों के बारे में पैदा होने वाली शंकाओं को दूर करे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अमरीका के आर्थिक युद्ध की आलोचना करते हुए ईरान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों का समर्थन करने की पहल के महत्व पर बल दिया। उल्लेखनीय कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने हमेशा कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमरीका परमाणु समझौते में वापस लौटता है और इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अन्य पक्षकार भी अपने दायित्वों को पूरा करते हैं तो तेहरान द्वारा परमाणु समझौते की प्रतिबद्धताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदम बहुत तेज गति से वापस हो जाएंगे। IRGC के कमांडर ने कहा है कि हम ईरान के महान वैज्ञानिक शहीद मोहसिन फखरीजादे के रास्ते को दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन इस्लामी गणतंत्र ईरान की उस कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे जो हम सही समय पर उन्हें देने वाले हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के महान वैज्ञानिक शहीद मोहसिन फखरीजादे की याद में आयोजित एक प्रोग्राम में कहा कि ईश्वर की हम पर सबसे बड़ी कृपा शहादत और बलिदान है। जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हम ईरानी राष्ट्र को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि देश के महान वैज्ञानिक की कायरतापूर्ण हत्या का बदला हम जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि शहादत हमारे लिए सम्मान की बात है। जनरल सलामी ने कहा कि जैसा कि हमने देखा कि जनरल शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत अहंकारी व साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए अपमान का कारण बनी है, उसी तरह शहीद मोहसिन फखरीजादे की शहादत दुश्मनों के लिए अपमान का कारण बनेगी। उन्होंने कहा कि फखरीजादे की शहादत से हमारी प्रगति की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ने वाली है, बल्कि हमारी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज होगी। IRGC की एरोस्पेस छावनी के कमांडर ने क्षेत्र से कैंसर के फोड़े अमरीका को उखाड़ने पर ताकीद की है। जनरल अमीर अली हाजीजादे ने किरमान में तस्नीम न्यूज इंटरव्यू में ये बात कही। वो शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र का दर्शन करने किरमान गए थे। जनरल हाजीजादे ने कहा कि अमरीकियों को क्षेत्र से निकालना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी जब तक क्षेत्र में हैं उस वक्त तक क्षेत्र को अपमान, अशांति और दुर्भाग्य का सामना रहेगा। उन्होंने अमरीका को कैंसर के फोड़े से उपमा देते हुए उसे क्षेत्र से उखाड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महाशैतान अमरीका के खिलाफ ईरान का संघर्ष जारी है। ईरान में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 295 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने बुधवार को देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की कुल तादाद का जिक्र करते हुए कहा कि डायग्नोस के स्पष्ट मानदंड के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 10,223 नए केस सामने आए, जिनमें 1,747 लोग भर्ती हुए और बाकी लोगों को OPD पेशेंट के तौर पर जरूरी सेवा दी गई। उन्होंने बताया कि ईरान में अब COVID-19 की चपेट में आने वालों की तादाद 10,72,620 हो गई, जबकि 7,65,639 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 295 लोगों की COVID-19 से मौत हुई है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 51,212 हो चुकी है। दुनिया में अब तक 6,87,724 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 4,76,39,783 लोग ठीक हो चुके हैं और 15,66,040 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, भारत, ब्राजील, रूस और फ्रांस में क्रमशः कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था के हित संरक्षक परिषद के सदस्य आयतुल्ला मोहम्मद यजदी का बुधवार को निधन हो गया। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला मोहम्मद यजदी को हाल ही में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आयतुल्ला यजदी ने इस्लाम के प्रचार प्रसार और इस्लामी क्रांति के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय संघर्ष में गुजारा। साथ ही इस्लामी ज्ञान के क्षेत्र और ईरान की इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अलग अलग संस्थाओं में अपनी मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के बाद बुधवार को 89 बरस की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हाल के दिनों में यूरोपीय देश लगातार तुर्की पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। कई मोर्चों पर एक साथ उतरे तुर्की के सामने अब कई तरह की समस्या पैदा हो गई है। इस बीच यूरोपीय यूनियन के देश भूमध्य सागर क्षेत्र में मौजूद गैसों के उत्खनन विवाद को लेकर तुर्की के खिलाफ पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में तुर्की के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के प्रभाव को लेकर एक बैठक भी की। माना जा रहा है कि 10 से 11 दिसंबर को तुर्की के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि उनका देश धमकियों और ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगा। हालांकि उन्होंने भूमध्य सागर में गैस क्षेत्रों को लेकर जारी विवाद को हल करने के लिए बातचीत की पेशकश की है। बता दें, इस क्षेत्र में गैस को लेकर तुर्की का ग्रीस के बीच तनाव चरम पर है। इन क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंड्रियास ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के सभी देशों ने 7 दिसंबर सोमवार को सहमति व्यक्त की है कि तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गैस की खोज की अपनी नीति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं किया है। इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि तुर्की के खिलाफ एक दंडात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसे लेकर अब यूरोपीय काउंसिल की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कुछ दिन पहले यूरोपीय यूनियन को सैन्य चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सप्ताह के अंत से हम हर संभावना और परिणाम के लिए तैयार हैं। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरू में फैली रहस्यमय बीमारी के मरीजों के खून के सैंपलों की जांच में सीसा और निकल जैसी धातु मिली है, लेकिन अभी भी सरकार ने किसी तरह के प्रदूषण की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि दिल्ली स्थित एम्स द्वारा की गई प्राथमिक जांच में मरीजों के खून के सैंपलों में सीसा और निकल मिले हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और दूसरे संस्थान में जांच अभी भी चल रही है और उम्मीद है कि नतीजे जल्द आएंगे। मंगलवार को इस बीमारी के लक्षणों वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 556 हो गई। हालांकि इनमें से 458 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है और सिर्फ 98 अभी भी भर्ती हैं जिन पर जांच चल रही है। मरीजों में 12 साल से कम उम्र के 45 बच्चे भी हैं। इन सभी लोगों को दौरे पड़े थे, उल्टियां आई थीं और फिर वे बेहोश हो गए थे। इस बीच स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि दौरे पड़ना और बेहोश होना सभी मरीजों में सिर्फ एक बार देखा गया। परिवार में केवल एक ही व्यक्ति में ये लक्षण दिखे, जिसका मतलब है कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं फैलती। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका दिया। अदालत ने पेंसिल्वेनिया के चुनाव को लेकर उनकी तरफ से की गई अपील को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका देते हुए पेंसिल्वेनिया के चुनाव को लेकर उनकी तरफ से की गई अपील को खारिज कर दिया। याद रहे कि 3 नवंबर को हुए चुनाव के एक महीने से अधिक समय बाद भी ट्रंप अभी भी डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन की जीत को स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। ट्रंप और उनके सहयोगियों ने कई प्रमुख राज्यों में दर्जनों मुकदमे दायर किए, जिनमें से लगभग सभी को अदालतों की तरफ से खारिज किया जा चुका है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, तो राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इसराइली अधिग्रहण के जारी रहने और उसके अपराधों की प्रतिक्रिया में 8 अक्टूबर वर्ष 1987 को पहला फिलिस्तीनी इंतवाजा अस्तित्व में आया था। उसके अस्तित्व में आने का मूल कारण यह था कि एक ज़ायनी ट्रक ने जबालिया में रहने वाले गजा पट्टी के 4 फिलिस्तीनियों को कुचल कर शहीद कर दिया था। केवल उसी वर्ष ज़ायनी सैनिकों ने 1,300 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया था और उसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने 160 ज़ायनी सैनिकों को मौत घाट उतार दिया था। वर्षों से तुर्की के यूरोप में शामिल होने की बात चल रही है। यूरोप का मानना है कि यूरोप की जो आकांक्षाएं हैं उससे तुर्की दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। तुर्की में बहुत से लोगों का मानना है कि इस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए अब आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुर्की के नुकसान में है कि वो इससे अधिक यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए प्रयास करे। उसकी वजह यह है कि यूरोपीय संघ को जिन समस्याओं का सामना है उसके दृष्टिगत ये ज्ञात नहीं है कि आगामी वर्षों में वो बाकी भी रहेगा या नहीं।
मैक्रोन बेलासंदन फ्रांसा कुर्तुसुन।
भारत सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़ी हैं, जिसकी वजह से गतिरोध अब भी बना हुआ है और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के मध्य होने वाली वार्ता विफल हो गई थी, जिसके दृष्टिगत आज सरकार और किसानों के मध्य होने वाली वार्ता को रद्द कर दिया गया है। किसानों ने आज जहां बैठक करके आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया, वहीं भारत की केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को एक लिखित प्रस्ताव दिया है और कहा है कि नए कृषि कानून में MSP बना रहेगा। ज्ञात है कि किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। इसराइली अधिग्रहण के जारी रहने और उसके अपराधों की प्रतिक्रिया में 8 अक्टूबर वर्ष 1987 को पहला फिलिस्तीनी इंतवाजा अस्तित्व में आया था। उसके अस्तित्व में आने का मूल कारण यह था कि एक ज़ायोनी ट्रक ने जबालिया में रहने वाले गजा पट्टी के 4 फिलिस्तीनियों को कुचलकर शहीद कर दिया था। केवल उसी वर्ष ज़ायोनी सैनिकों ने 1,300 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया था और उसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने 160 ज़ायोनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। खालिद सबन्ना की रिपोर्ट पेश करें साथी कायम रिजवी।
इसराइली अतिग्रहण के जारी रहने और उसके अपराधों की प्रतिक्रिया में 8 अक्टूबर 1987 को पहला इंतफाजा अस्तित्व में आया था। उसके अस्तित्व में आने का मूल कारण यह था कि एक ज़ायोनी ट्रक ने जबालिया में रहने वाले 4 फिलिस्तीनियों को कुचल दिया था, इस प्रकार वे शहीद हो गए। इस प्रकार गजा पट्टी से लेकर पश्चिमी किनारे और फिलिस्तीन के समस्त क्षेत्रों में स्थिति तनावग्रस्त हो गई थी। ज़ायोनी सैनिकों की ओर पत्थर फेंकने में फिलिस्तीनी जवानों के साथ फिलिस्तीनी महिलाएं भी साथ साथ थी। इसके परिणाम स्वरूप ये पत्थर के इंतफाजे के नाम से मशहूर हुआ। पहले इंतफाजा को मैंने पूरी तरह नजदीक से देखा था। मैं फिलिस्तीनी प्रशासन के नेताओं में था और मैं उस क्षेत्र में था जो 9 गांवों से मिलकर बना था। पहले इंतफाजा में जब प्रशासन के अधिकारियों और लोगों की राय एक साथ हो गई तो फिर इसराइल की चूल्हे हिलकर रह गई। इंतफाजा में कई काम होते थे, जैसे पत्थर फेंकना, प्रतिबंध और इसी प्रकार अतिग्रहणकारियों से झड़पें भी होती थीं। इंतफाजा जारी था, यहाँ तक कि ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये समाप्त हो गया। मानो इंतफाजा को रोकने के लिए ही ये षड्यंत्र किया गया था।
1,300 فلسطيني قتلوا مقابل
उस साल 1,300 फिलिस्तीनी शहीद हुए, जबकि 160 ज़ायोनी सैनिक मारे गए। हजारों फिलिस्तीनी घायल हो गए और बहुतों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हजारों घरों को तबाह कर दिया गया और जैतून के 1,40,000 पेड़ों को काट दिया गया। ज़ायोनियों ने अमेरिका की मदद से ओस्लो समझौते की योजना तैयार की थी। इसके बावजूद ये इंतफाजे के खत्म होने का कारण नहीं बना, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने 2000 में दूसरा और 2015 में तीसरा इंतफाजा फिर से आरम्भ किया। ऐसा लग रहा है कि आजकल फिर फिलिस्तीनी क्षेत्र ज़ायोनियों के खिलाफ हिंसा व झड़प के साक्षी बने हुए हैं। फिलिस्तीन से IRIB के लिए खालिद सबर्ना की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
यूरोप का मानना है कि यूरोप की जो आकांक्षाएं हैं उससे तुर्की दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। तुर्की में बहुत से लोगों का मानना है कि देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए अब आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुर्की के नुकसान में है कि वो इससे अधिक यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए प्रयास करे। उसकी वजह यह है कि यूरोपीय संघ को जिन समस्याओं का सामना है उसके दृष्टिगत ये ज्ञात नहीं है कि आगामी वर्षों में वो बाकी भी रहेगा या नहीं। साथ ही सैयद मीसम अब्बास,
सालों से तुर्की के यूरोप में शामिल होने की बात चल रही है। यूरोप का मानना है कि यूरोप की जो आकांक्षा है उससे तुर्की दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है।
अवरूपा बेली ने,
ये तुर्की के नुकसान में है कि वो इससे अधिक यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आग्रह करे, क्योंकि यूरोपीय संघ को जिन समस्याओं का सामना है उसके दृष्टिगत ये ज्ञात नहीं है कि आगामी वर्षों में वो बाकी भी रहेगा। इस मध्य यूरोप में फ्रांस और यूरान ने तुर्की के साथ मतभेदों को पहले से अधिक स्पष्ट कर दिया है, यहाँ तक कि इन देशों ने यूरोप की ओर से तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है।
यूरोपियन कमीशन,
भूमध्य सागर में तुर्की जो ऊर्जा खोजी अभियान चला रहा है उसमें पिछले कुछ महीनों के दौरान वो यूनान से युद्ध के मुहाने तक पहुँच गया था। तुर्की और फ्रांस के नेताओं के मध्य वाक्य युद्ध भी तेज हो गया है। कुछ समय पहले रजब तैयब अर्दोगान ने कहा था कि मैक्रां का दिमाग खराब हो गया है और अब वो कह रहे हैं कि फ्रांस को मैक्रां से मुक्ति हासिल कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रांस, यूरोपीय संघ और उसके एशियाई पड़ोसी देशों में क्या प्रतिक्रिया हुई और क्या होगी, इसके बारे में हमारे संवाददाता पेरिस से रिपोर्ट दे रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर काफी समय पहले तुर्की और फ्रांस के संबंधों में चुनौतियां थीं, पर अब हालिया दिनों में दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
मैक्रॉन बेलासंदन फ्रांसा कुर्तुसुन,
एर्दोगान ने मैक्रॉन को जो जहनी बीमार कहा था उससे पेरिस और अंकारा के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, यहाँ तक कि पेरिस ने अंकारा से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। तुर्की और फ्रांस के संबंधों के इतिहास में ये पहली बार है कि एक देश के राजदूत को वापस बुलाया जाता है। तुर्की और यूरोपीय संघ के संबंध विभिन्न मामलों को लेकर, विशेषकर लीबिया के विषय को लेकर, पिछले एक वर्ष में ठंडे पड़े हैं और दिन प्रतिदिन वे ठंडे ही पड़ते जा रहे हैं। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मैक्रॉन द्वारा अपने मिस्री समकक्ष के गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के औचित्य में कह रहे हैं कि यह तुर्की को नियंत्रित करने की दिशा में किया गया है। यूरोपीय संघ के राजनीतिक वातावरण में तुर्की को नाटो के पिछलग्गू देश के रूप में याद किया जाता है और अगले महीने यूरोपीय संघ की जो बैठक होने वाली है उसमें इस पिछलग्गू देश के खिलाफ प्रतिबंध के मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। शहसवार हुसैन, IRIB, पेरिस।
भारत सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़ी हैं, जिसकी वजह से गतिरोध अब भी बना हुआ है और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।
विवादित कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के अपने रुख पर अडिग रहने के कारण गतिरोध अब भी बना हुआ है और इसको तोड़ने के प्रयास भी जारी है। इस मुद्दे पर कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं की वार्ता विफल होने के बाद सरकार और किसानों के बीच छठे चरण की आज होने वाली वार्ता रद्द कर दी गई। एक ओर जहां किसानों ने आज बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार किया, वहीं केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को एक लिखित प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि नए कृषि कानूनों में MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा। किसानों की ओर से मांग की गई है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। किसान सख्ती से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद ही अगले कदम पर फैसला किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों को भेजे गए प्रस्ताव में उन संशोधनों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सरकार लाना चाहती है। सरकार ने मंडी सिस्टम और APMC एक्ट में भी बड़े बदलाव करने का भरोसा दिलाया है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को नहीं लाया जाएगा। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर फैसला करेंगे और किसान वापस नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार ने जहां संशोधन का प्रस्ताव पेश करके अपने इस रुख पर बल दिया है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, वहीं किसान अपनी इस मांग पर डटे हुए हैं कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि उनके अनुसार ये किसान के खिलाफ हैं। टिकैत ने कहा कि यदि सरकार जिद्दी है तो किसान भी जिद्दी हैं। उधर कृषि कानूनों को लेकर आज 24 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल, पर उससे पहले आप सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, प्रोग्राम शौर्य गाथे की यह कड़ी स्वाति और मोहम्मद अली को लेकर हाजिर है। प्रोग्राम में हम फाओ द्वीप को वापस लेने के लिए इराक की बासी सेना द्वारा केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे। आशा है पसंद करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ प्रोग्राम में हम विशाल व सफल वल फज्र 8 सैन्य ऑपरेशन और इसमें अरवंद नदी के किनारे फाओ शहर पर कब्जे के बारे में बताया। ये भी बताया कि इस ऑपरेशन की तैयारी इतनी खामोशी से की गई कि सद्दाम शासन को इसकी भनक भी नहीं लगी और इस ऑपरेशन के नतीजे में इस शासन को बहुत बड़ी हार हुई। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने ईरानी फोर्सेस के नियंत्रण में आने वाले इलाकों को छुड़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। इराक के बासी शासन की ओर से अपनाए गए हथकंडों में एक केमिकल हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था।
पूरे 8 साल की जंग के दौरान ईरानी थल सेना के हमलों के मुकाबले में इराक की बासी सेना ने अपने फौजियों के कमजोर बिंदुओं को छिपाने के लिए डिफेंसिव टैक्टिक के साथ साथ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। खुर्रम शहर के आजाद होने के बाद इराकी सेना ने लगभग ईरान के सभी ऑपरेशन के खिलाफ इस हथकंडे को इस्तेमाल किया। वल फज्र 2 ऑपरेशन में, जो वल फज्र ऑपरेशन से करीब 3 साल पहले अंजाम पाया था, इराकी फौज ने ईरानी फोर्सेज के खिलाफ पहला प्रभावी केमिकल हमला हाज इमरान छावनी पर किया था। अलबत्ता यह हमला बहुत ही सीमित स्तर का था और इसमें सिर्फ मस्टर्ड गैस इस्तेमाल हुई थी। वल फज्र 4 ऑपरेशन में मस्टर्ड गैस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई थी और नर्व एजेंट के बारे में भी संदिग्ध रिपोर्ट सामने आई थी।
खैबर ऑपरेशन में हुए शुरू के हफ्ते में बड़े पैमाने पर मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन धमाका करने वाले सिस्टम में खराबी की वजह से बड़ी हद तक बम फट नहीं पाए। इसी ऑपरेशन में कुछ हफ्ते बाद इराक की बासी सेना ने नर्व गैस के 2 छोटे छोटे हमले किए जिसमें करीब 800 लोग घायल हुए थे। इस हमले में बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ था। इसके कुछ हफ्ते बाद इराक ने दम घोटने वाली खास गैस का हमला किया जो खैबर ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई गैस से मिलती जुलती थी। अलबत्ता इस गैस में घायल होने वालों की तादाद मस्टर्ड गैस जितनी ज्यादा नहीं थी। इस बारे में एक अहम बिंदु यह है कि उस वक्त तक गैसों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते थे। बद्र ऑपरेशन में इराकी सेना ने ईरान के खिलाफ पहले नर्व गैस का इस्तेमाल किया, फिर साइनाइड गैस और फिर दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया। यह ऐसा कृत्य था जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। इस हमले की वजह से कम बेहोशी के 200 केस सामने आए और अगर तेजी से इलाज न हुआ होता तो बड़ी तादाद में ईरानी वीर शहीद होते। साइनाइड और नर्व गैस के इस्तेमाल के कई दिन बाद मस्टर्ड गैस का मध्यम स्तर पर हमला शुरू हुआ और फिर कुछ वक्त के बाद केमिकल हमले रुक गए। पूर्व अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बर्जेंस्की
although they were employed by the Iraqis against the Iranians in the 1980s.
ایک موقع پر یہ بات قبول کی تھی کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کیمیکل حملوں میں صدام کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں.
And there's now increasing evidence that they used them in connivance with us. And we are providing them precise information where to strike, knowing that the effect would be massive casualties.
والفجر 8 سینی آپریشن میں صدام شاسن کو ہوئی بھاری ہار اور ہاتھ سے جانے والے علاقوں کی اسٹریٹجک اہمیت کے مد نظر بڑے پیمانے پر کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے. جس پیمانے پر والفجر 8 آپریشن میں کیمیکل ہتھیاروں سے علاقے دوشت ہوئے, نانا پرکار کے کیمیکل ایجنٹ لمبے وقت کے لیے استعمال ہوئے, اتنا 8 سال کے دوران کبھی نہیں ہوئے. پہلے چرن میں 14 سے 18 ویمانوں نے علاقے پر حملہ کیا اور ایک گھنٹے کے بھیتر ان کی تعداد 32 ہو گئی. یہ ویمان ایک ساتھ اڑان بھرتے اور ویمانوں کے ایک دستے کی بمباری کے بعد دوسرا دستہ شیتر میں داخل ہوتا تھا. بمباری کے اس انداز سے تھوڑے ہی وقت میں علاقے میں بھاری پردوشن ہو جاتا تھا. ہر بمبار ویمان 250 کلو کیمیکل گیس کے کم سے کم 600 یا 500 کلو کیمیکل گیس کے کم سے کم 8 بم مارتا تھا.
عراق کے گرفتار ہوئے ایک پائلٹ سے جو 2 بار کیمیکل بمباری کر چکا تھا اور بریگیڈ کی ڈیفنسو کیمیکل اکائی کے ادھیکاری سے حاصل ہوئی جانکاری سے پتہ چلتا تھا کہ عراق میں کیمیکل مائکروب اکائی کا اٹیکنگ و ڈیفنسو ڈھانچہ بہت مضبوط تھا, جس میں یونیورسٹی کے استاد اور وشیشجے کام کرتے تھے. زہریلی کیمیکل گیس کے بڑے بھاگ کا اتپادن عراق کے بھیتر ہوتا تھا, جس کے اتپادن میں ودیشی سلاحکار مدد کرتے تھے. اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمی خامنائی نے حال میں اپنے ایک بھاشن میں
دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئله براش تو خبرگزاری ها و تو روزنامه ها و توی تلویزیون ها منعکس میشه که بله یک گربه یا مثلا روبایی تو چاه افتاده بود جمع شدن
صدام کے کیمیکل حملوں پر دنیا کے دیشوں اور انتراشٹری سنگٹھنوں کی خاموشی کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ جو دنیا کبھی ایک بلی کے کنویں میں گر جانے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے, وہ اتنے بھیانک اپرادھ پر خاموش تھی.
برای این چیزا دنیا اون جنجال ها رو به راه می اندازه, وقت برای یک کشتار شیمیایی یک شهر این دنیا سالم می مونه.
اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے سردشت شہر پر جون 1987 میں ہوئی کیمیکل بمباری کی مثال پیش کی.
خب سردشت رو بمباران کردن در سال 66.
اتنی بڑی گھٹنا کیا مزاق کی بات ہے کہ ایک شہر پر کیمیکل بمباری میں ہزاروں لوگوں کو تباہ کریں, جس میں چھوٹے بڑے مرد عورت اور بچے شامل ہوں, اور پوری دنیا خاموش رہے.
شوخیه یک شهر را بمباران شیمیایی بکنن, هزاران نفر را در یک شهر, بچه بزرگ پیر جوان زن مرد نابود کنن و دنیا سکوت کنه.
چونکہ اکت زہریلے تتو ایک ساتھ استعمال ہوئے تھے, ایک گھائل ویر مسٹرڈ گیس, سائنائڈ گیس اور نرو ایجنٹ سے انفیکٹڈ ہوتا تھا. کیمیکل حملہ اس وقت ہوتا تھا جب صبح کے وقت ہلکی ہلکی ہوا چلتی تھی اور ٹیمپریچر 20 ڈگری سیلسیس ہوتا تھا. دوسری اور جن علاقوں پر کیمیکل بم گرائے تھے ان میں کھجور کے باغ بھی تھے. ان علاقوں میں کھجور کے پیڑ ہونے کے علاوہ زمین پر چاروں اور ونسپتیاں اگی ہوئی تھیں جن کا کیمیکل تتووں کے لمبی مدت تک باقی رہنے میں بڑا رول ہوتا تھا. چونکہ ہر دن ان زہریلے تتووں میں خاص طور پر مسٹرڈ گیس کی کچھ ماترا علاقے سے نکل جاتی تھی, باسی دشمن کیمیکل گیس کے گاڑے پن کو باقی رکھنے کے لیے ان علاقوں کو توپ کے کیمیکل گولوں سے دوشت رکھتے تھے. البتہ کچھ رپورٹوں میں عراقی باسی سینا دوارا علاقے کو دوشت رکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا بھی ذکر ملتا ہے. اسی طرح ویمانوں سے گیس پھیلانے کی شیلی اپنائی گئی. اس بارے میں ایک انیہ اہم بندو یہ ہے کہ عراقی سینا رات کو کیمیکل بمباری کرتی تھی تاکہ بڑی تعداد میں ایرانی فورسز کو نقصان پہنچا سکے.
حالانکہ دشمن کیمیکل بمباری کو آپریشن کے پورے علاقے اور اس سے جڑے علاقے میں دھیرے دھیرے بڑھاتا گیا, لیکن اسے زیادہ سفلتا کھجوروں کے باغ والے علاقے میں ملی. انہوں نے اس کرت سے بڑی تعداد میں ایرانی فورسز کے جوانوں کو کیمیکل ہتھیاروں سے گھائل کر جنگ کے مورچے سے واپس بھیج دیا. آپریشن کے شروعاتی دنوں میں کیمیکل حملے میں گھائل اور عام فوجیوں کے آنکڑے کی تلنا سے پتہ چلتا ہے کہ کیمیکل حملے میں گھائل ہونے والوں کی تعداد عام حملوں میں گھائل ہونے والوں سے زیادہ تھی. والفجر آٹھ آپریشن کی شروعات سے جنگ کے مورچے سے واپس بھیجے گئے عام گھائلوں کی تعداد 13,000 تھی, جبکہ تین دن میں دو کیمیکل حملے میں 9,000 سے زیادہ ویر جوان گھائل ہوئے تھے. آپریشن کے شروع کے پانچ دنوں کی سمیکشا سے پتہ چلتا ہے کہ کیمیکل ہتھیاروں سے ویر جوانوں کو نشکری بنانے کا اثر عام ہتھیاروں سے گھائل ہونے والوں جتنا تھا.
عراق کی باسی سینا نے فاو دویپ کو واپس لینے کے لیے نانا پرکار کی کارروائی کے باوجود ایرانی ویروں کی 75 دن کی لڑائی کے سامنے اپنی ہار قبول کی اور اس نے اپنی ڈیفینسو لائن مضبوط کرنے پر دھیان کیندرت کیا. دوستوں آج کا کارکرم کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سواتی اور محمد علی کمی کو اجازت دیں. خدا حافظ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم. آج کل
دوستو آج کل کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. آج کے کارکرم میں ہم عراقی یوواؤں کے برین واش کے مدعے سے امریکہ نے آئی لیپ نام کا ایک کارکرم آرمبھ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم کرمبدھ روپ سے چرچا کریں گے.
دوستو، عراق پر حملہ کرنے کے بعد اس دیش میں اپنی رڑنیت کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر امریکہ اور اس کے اسٹریٹجک گھٹکوں نے اس دیش میں اپنے دیرکالین لکشوں کی پراپتی کے انترگت ایک نئی یوجنا تیار کی ہے، جس کے انترگت وہ عراق یدھ میں بگڑی اپنی چھوی کو سدھارنے کے ساتھ ہی عراق میں اپنے پربھاؤ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس یوجنا کا نام ہے آئی لیب، ارتھات عراقی ینگ لیڈرز ایکسچینج پروگرام۔ واشنگٹن میں مدھیہ پورو معاملوں سے سمبندھت انسٹیٹیوٹ میں ورشوں اپنی سیوا دینے والے ڈینیس روس نے اپنے ایک لیکھ میں لکھا ہے کہ ورتمان پرستھتیوں میں 2008 میں عراق کے ساتھ ہوئے امریکہ کے اسٹریٹجک سمجھوتے کا اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے۔ ڈینیس روز نے یہ لیکھ 24 دسمبر ورش 2019 کو لکھا تھا۔ اپنے لیکھ میں انہوں نے عراق میں امریکہ کی بھومکا کی بات لکھی۔ اسی کے ساتھ ڈینیس روز نے عراقی جنتا میں ایران کے بڑھتے پربھاؤ کے پرد بھی سچیت کیا ہے۔
یہ واستوکتا ہے کہ کھیتری دیشوں میں امریکہ کا ہستکشیپ جہاں داعش سہت آتنکوادی گٹوں کے کھلے سمرتھن کا کارن بنا، وہیں کھیتری دیشوں پر اس کے برے سانسکرتک پربھاؤ بھی پڑے ہیں۔ امریکہ نے عراقی ینگ لیڈرز ایکسچینج پروگرام آئی لیب نام کے کاریہ کو عراقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ بغداد میں استھت امریکی دوتاواس کی اور سے اسے عراق میں لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس کاریہ نے عراقی ادھیکاریوں کو چنتت کر رکھا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس میں بھاگ لینے والے نیتک ملوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہی کارن ہے کہ وہ اس کے ادیش کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کاریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ عراق کے بیچ ہوئے سمجھوتے کا پرینام ہے۔ دوستو، اس کے وستار میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے کی اور پلٹ کر اس نئے امریکی کاریہ کو سمجھنے کا پریاس کریں گے۔
دوستو، امریکہ دوارا عراق پر سن 2003 میں کیے گئے حملے کو 21ویں شتابدی کے آرمبھ کی مہتوپورن گھٹنا مانا جاتا ہے۔ یہ واستو میں عراق میں امریکہ کے بڑھتے پربھاؤ کی بھومکا تھا۔ امریکی راج نیتاؤں نے عراق پر حملے کے لیے سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کو آشوست کرنے کے ادیش سے 2003 میں عراق کے ورد جھوٹے پرمان جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ انتتہ بہت ہی کمزور اور نرادھار دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے سرکشا پریشد کو اندیکھا کیا اور اپنا الو سیدھا کر لیا۔ حالانکہ اپنے پرماؤں سے امریکہ نہ تو راشٹر سنگھ کو اور نہ ہی وشو سمدائے کو آشوست کر پایا۔ امریکہ نے برٹن اور پولینڈ کے ساتھ ہی 29 دیشوں کے سینکوں کی مدد سے 20 مارچ 2003 کو عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے تتکالین راشٹرپتی جارج ڈبلیو بش نے عراق یدھ کے بیچ میں پہلی بار یہ کہا کہ حملے کا ادیش عراق میں ستہ کا پریورتن ہے۔
عراق کے اتکرمن کے بعد اس دیش کے بارے میں بش کے پاس کوئی یوجنا نہیں تھی۔ عراق کی سماجک پرستھتیوں سے انبھگیتا کے کارن یدھ کے دوران بش کو کئی بار اپنی رننیتی بدلنی پڑی۔ جارج بش کی اس نیتی کو امریکہ کے بھیتر اور باہر ہر سطر پر کڑے ویروت کا سامنا کرنا پڑا۔ وشیش بات یہ ہے کہ جس مدعے کو آدھار بنا کر عراق پر حملہ کیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پورن روپ سے نرادھار تھا۔ ہر اور سے ہونے والے ویرودھوں کا سامنا کر رہے بش نے انت میں 10 جنوری 2007 کو یہ سویکار کیا کہ عراق کے بارے میں ان کی رننیتی ٹھیک نہیں تھی۔ اسی دن سے عراق سے امریکی سینکوں کی واپسی، نیتیوں میں پریورتن اور نئے سمجھوتے کی بات سامنے آنے لگی۔ یہ سمجھوتا عراق اور امریکہ کے بیچ کرشی، ویاپار، وانیج، سنسکرتی، ارتھشاستر، شکشا، ارجا، سواستھ، کھیتری سرکشا اور آنترک سرکشا، نیائے اور پریوہن کے بارے میں تھے۔ عراق اور امریکہ کے بیچ ہوئے سمجھوتے کو عراقی سنسد نے 27 نومبر 2008 کو پاس کر دیا۔ سن 2011 میں عراق سے بڑی سنکھیا میں امریکی سینکوں کے واپس جانے کے ساتھ ہی یہ سمجھوتا ویوہارک روپ سے لاگو ہوا۔
दोस्तों, सांस्कृतिक कूटनीति को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि राष्ट्रों के बीच वार्ताएं और समान मूल्यों के आधार पर संयुक्त समझौती करना। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक कूटनीति अर्थात समान सोच को प्राप्त करने तथा आपसी समझबूझ को मजबूत करने के लिए विचारों, कला, जीवन शैलियों, मूल्यों, परंपराओं और आस्थाओं पर परस्पर आदान प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इस प्रकार के आदान प्रदान विदेश नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अन्य राष्ट्रों से अपनी सत्ता को मनवाने के लिए इस नीति को सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखा जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका को यह पता था कि इराक युद्ध तो एक दिन अवश्य रुक जाएगा, किंतु इराक सहित पूरे मध्य पूर्व में अपनी दीर्घकालीन उपस्थिति को सुनिश्चित बनाने के लिए उसे कुछ करना होगा। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति से संपन्न एक अरब राष्ट्र के रूप में इराक को मध्य पूर्व के लिए आदर्श बनाने की योजना तैयार की। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत सॉफ्ट पावर का सहारा लेते हुए इराक के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए। इस प्रकार से 2011 से इराक में अमेरिका के सॉफ्ट पावर का प्रयोग करते हुए इस देश में अमेरिका की सांस्कृतिक कूटनीति को विस्तृत किया जाने लगा।
इसी संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 31 अगस्त 2011 को कहा था कि इराक में हमारी सैन्य उपस्थिति के घटने के साथ ही हमारे राजनयिक सहायताकर्मी, सलाहकार और नागरिक वहां पहुंचते रहेंगे। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इराक के तत्कालीन प्रधानमंत्री नूरी मालिकी ने नवंबर 2007 में आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा के संबंध में एक समझौता किया था। इस समझौते ने मध्य पूर्व से संबंधित अमेरिकी विस्तारवादी नीतियों को न केवल इराक में दीर्घकालीन अवधि के लिए सुनिश्चित किया, बल्कि मध्य पूर्व में अमेरिका के दृष्टिगत लक्ष्यों को साधने में भी सहायता की।
उदाहरण स्वरूप, इराक और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित होने वाले समझौते के 19वें अनुच्छेद में कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों और असैनिकों तथा अमेरिकी कंपनियों के लोगों को बिना किसी अनुमति के कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक, शॉपिंग सेंटर, मेडिकल स्टोर या इसी प्रकार के आवश्यक चीजों के लिए दुकानें और कार्यालय खोलने का पूरा अधिकार है। इस समझौते के अध्ययन से पता चलता है कि इराक के भीतर अमेरिका राष्ट्रसंघ की भूमिका निभाना चाहता है। वो यहाँ पर स्वामी के रूप में बाकी रहना चाहता है। इस प्रकार से अमेरिका इराक का अभिभावक बन जाएगा और इराक अमेरिका के एक राज्य के रूप में वॉशिंगटन के साथ काम करेगा।
दोस्तों, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के काल में सन 1961 में स्थापित होने वाली अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने सन 2007 में अमेरिका के विदेश और गृह मंत्रालय के साथ आधिकारिक रूप में सहयोगी एजेंसी के तौर पर काम करना शुरू किया। USAID नामक सांस्कृतिक कूटनीति का मुख्य एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। ये अमेरिकी संस्था इराकी समाज पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सन 2014 में इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि इस संस्था के कर्मचारी पूरे साल अपनी गतिविधियां अंजाम देते हैं, किंतु उसके सबसे अधिक परिणाम फरवरी और मार्च के महीने में सामने आते हैं। इसकी अधिकांश गतिविधियों को अधिकतर सिखाने वाले तथा परामर्शदाता वर्कशॉप के रूप में अंजाम दिया गया।
रोचक बिंदु यह है कि अमरीकी एजेंसी का पूरा ध्यान इराक की व्यवस्था पर केंद्रित है। इसका परिणाम यह निकला कि उससे अधिकतर संपर्क करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से इस अमरीकी संस्था का पूरा ध्यान इराक के 3 विकसित राज्यों अरबिल, बगदाद और बसरा पर केंद्रित है। इसे यह भी पता चलता है कि इस संस्था की गतिविधियां इराक के सुदूर पूर्व क्षेत्रों में न के बराबर है। ये बात इसकी सूचक है कि अमेरिका की नज़र में इराक के विकसित क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित है।
एजेंसी की नीति इस बात पर आधारित है कि शैक्षिक अनुभव हासिल करने के लिए इराक की संस्थाओं से सहायता ली जानी चाहिए। عراق کے بھیتر امریکہ کی سب سے ادھک دلچسپی اس دیش کے پردھان منتری اور راج پریشدوں دوارا وشیش کیے گئے کارکموں کے سمرتھن میں ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اس امریکی ایجنسی اور عراق کے سرکاری انوشٹھانوں کے بیچ ایک پرکار کا سمنوے پایا جاتا ہے۔ ہر یہ دنوں میں اس ایجنسی کا وشیش دھیان سرکاری کرمچاریوں کے پرشکشن پر کیندرت ہے، جبکہ وہاں کے سواستھ کے مدوں پر کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ اس سے عراق میں امریکی پراتھمکتاؤں کا پتہ چلتا ہے۔ تو شوتو، اسی کے ساتھ یہ کاریہ یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انمدیں، خدا حافظ۔
حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ بات چیت کا روپ اختیار کرتی ہے، اپنی بات چیت کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ عادت کا روپ اختیار کرتی ہے، اپنی عادت کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ چرتر کا روپ اختیار کرتی ہے، اپنے چرتر کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ تمہارے ویکتتو کا روپ اختیار کرتی ہے، اور اپنے ویکتتو کی اور سے ساودھان رہو کہ وہی تمہارا بھوشیہ ہے۔ انت میں مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر پیش ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ امریکہ ٹیکہ اور دوائیں آیات کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ سنیکت راشٹر مہا سچیف اینٹونیو گوٹیرس ایران سے پرمانو سمجھوتے کے بارے میں امریکی سر میں بات کر رہے ہیں۔ یورپی دیش میڈیٹرینین سی سے گیس نکالنے کے مدے پر ترکی پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، اور بھارت میں آندھر پردیش کے ایلورو شہر میں پھیلی رہسمے بیماری کے مریضوں کے خون کے سیمپل سے سیسا اور نکل جیسی دھاتو نکلی ہے۔ آشا ہے آپ کو یہ پریاس پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں آپ کے وچاروں کا انتظار رہے گا، جسے آپ ہمارے ای میل آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں، hindi@ws.irib.ir۔ شوتا، اسی کے ساتھ محمد علی قمی اور ساتھیوں کو انومتی دیجیے۔ شبراتری، خدا حافظ۔ Thank you.